खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज की सुबह हम सबको बख्श दी ताकि हम सब एक बार फिर इकट्ठे हों और अपने मुखालफ के बारे में सीखें, ना कि सिर्फ उसके बारे में जाने बल्कि उसको जाने के वो किस तरह हमारी जिंदगियों में बहुत दफ़ा हमको फरेब और हमको गुमराही की राह पर चलाने की कोशिश करता है। क्योंकि कल रात हमने यही सीखा कि हमें उस खुदा के बारे में जिसने आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, हमको, पानी के तमाम जानवरों को पैदा किया, ना कि उसके बारे में जानना है बल्कि उसको जानना है। और उसको जानने का वाहद एक ही जरिया है। कोई और किताब हमें नहीं बताएगी, कोई और रसाला हमें नहीं बताएगा, कोई और सियासतदान या कोई और जरिया नहीं बता सकता कि खुदा कौन है, किस तरह उसे जाना जाए या उसकी सिफात क्या है। वाहद खुदा का कलाम हमें सिखाता है। सो इसलिए हर रोज ईमानदार होते हुए हमें खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है यूनाइटेड स्टेट में और दूसरे रियासतों में, दूसरे खुदा के खादमों से। जिस खादम से, पास्टर जीन से मैं सीखता हूँ, वो बयान करते हैं कि बहुत दफ़ा जब वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो ईमानदारों के पास यकूब के खत में से सिर्फ एक ही वर्का होता है जिसे वो पढ़कर अपनी ज़िंदगी का दारोमदार और मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो हमें हर रोज़ बेहद खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा के कलाम के लिए। हर रोज़ हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उसका कलाम हमारे पास मौजूद है। और इसे खुदा का बंदा दाऊद जबूर 139 में कहता है कि जब मैं तेरे अजायब को देखता हूँ तो उनको जब गिनना शुरू करूँ तो वो रेत के जर्रों से भी कहीं ज्यादा है। जरा कभी वक्त निकाल कर बैठें इस सोच में कि खुदावंद के उन तमाम अजीब कामों को गिनना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द, अपने अजीज़ों की ज़िंदगी में, कि खुदा के कितने अजीब अजीब काम हैं। इस छोटे से सफ़र को कभी शुरू करके देखें। जब ऐसा कोई ईमानदार करता है तो हालात कैसे भी हों, दुख, बीमारी, मुसीबत, परेशानी, उस तमाम बादलों को जो हमारे ऊपर मंडलाते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ईमान से कह सकता हूं कि पालूस रसूल जब कैदखाना में था तो उसकी यही सोच थी कि खुदा के अजायब पर, उसके मोजजात पर, उसकी अजीब अजीब बातों पर गौर व फिक्र करे कि उसने किस तरह मुझे रोम में, किस तरह मुझे तीतस में, किस तरह मुझे उसने वहां पर, यहाँ पर रहाई बख्शी, कामयाबी बख्शी, हौसला दिया, जेल खाना में जाहिर होकर मुझसे कलाम किया और कहा कि मेरा मकसद तेरे लिए यही है। और मैं अमीर से कह सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आसिया बीबी, आपको उसके बारे में पता है, उम्मीद है कि हर रोज, हर रात, हर दिन, हर एक लम्हा वो अपनी तन्हाई में खुदा के उस अजाय पर नजर करती है, इसीलिए वो मुसलसल तौर पर सारे दुख और मुसीबत में से गुजर रही है। समय खुदा के कलाम में से इस बात पर गौर करने की जरूरत है। कभी इस छोटे से सफर को शुरू करें, हो सकता है आज ही बैठकर तन्हाई में या अपने खानदान के साथ, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, आए खुदा के अजायब पर गौर करें, ना के इस बात पर कि हमारे घर में ये मुश्किल है, ये परेशानी है, ये है। जब ऐसा करेंगे तो एक अजीब खुशी जो कि बयान से बाहर है वो आपको खुदा का कलाम, उसके अजायब बख्शेंगे। सो हम अपने मुखालफ के बारे में सीख रहे हैं ताकि उसे जानें, क्योंकि उसके इस निज़ाम में जिसमें वो खुशखबरी के पैगाम की नकल करता है, यानी कि अंजील को बदलता है, जिसमें वो अपने बनावटी चेले यानी के बनावटी पैरोकारों को खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनाकर इस्तेमाल करता है, जिसमें कह सकते हैं कि बहुत सी बिद्दत, बिद्दत की शुरू कहाँ से होती है, अबलीस से। बिद्दत का सबसे सादा सा मतलब यह है कि जुदाई या आपस में नातफाकी पैदा करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके दरमियान आकर कहना शुरू कर दूं कि मसीह नहीं मुआ, मसीह है ही नहीं, तो ये क्या है? बिद्दत है। सो अबलीस तमाम बिद्दात का क्या है? आगाज है। इसलिए वो अपने बनावटी खादमों को इस्तेमाल करता है कि मसीह की सच्चाई को बदलकर अपनी सच्चाई को ईमानदारों की सोच पर थोप दे। सो हमने इसके बारे में सीखा। फिर हमने सीखा बनावटी और झूठी और नकली मेज के बारे में, कि वो यीशु मसीह की शराकत की मेज को बदल कर अपनी मेज बनाता है। जैसे करंथियों के लिए हमें था सबसे बड़ा ये मसला कि जब शायरबानी की रस्म की जाती थी तो लोग ईमानदार शायरबानी की रस्म में शामिल होते थे। जब इर्तमस देवी या दूसरियां देवियों के कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी तो वो मंदिर में जाके मुफ्त गोश्त खाते थे, मुफ्त की कुर्बानी खाते थे, क्योंकि उसमें उनको पैसे नहीं भरने पड़ते थे। सो हमने इसके बारे में सीखा कि किस तरह अबलीस कहता है और किस तरह अबलीस गुमराह करता है। और फिर हमने बारे में सीखा था झूठी या कह सकते हैं नकली रास्तबाजी के बारे में, जिसमें इंसान सिर्फ अपने आप पर क्या कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं। अबलीस का सबसे बड़ा ये झूठ नस्ल इंसानियत के लिए आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है जगह जगह पर, कि वो इंसान को, अबलीस इंसान को सबसे पहले दुख नहीं पहुंचाना चाहता, वो उसे गुमराह करना चाहता है और कहना चाहता है कि तुझ में कोई गलती नहीं। जब इंसान को वो इस बात के लिए क्या कर लेता है, उभार लेता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? मुझ में कोई गलती नहीं, मैं दुरुस्त हूँ, मैं गुनाहगार नहीं, अगर मैं गुनाहगार नहीं तो मुझे मसीहा की ज़रूरत नहीं, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो मुझे इस बात का एहसास करने की ज़रूरत नहीं कि मैं गलत हूँ। सो ये इब्लीस का झूठ है, इसलिए वो झूठी रास्तबाजी को इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में हमने उस रास्तबाज बंदे के बारे में, जो अमीर बंदा था, जाना, जो कहता था कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और यीशु मसीह ने उसे कहा ये कर, उसने कहा हाँ मैं ये भी कर रहा हूं जवानी से। यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। उसके तकब्बर की दीवारों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने कहा अच्छा तू बहुत मजहबी बनता है, मैं जो सच्चाई को जानता हूं, मैं जो दिलों गुर्दों से वाकिफ हूं, तुझ में एक कमी है, तू बहुत ज्यादा अमीर है और ये तुझे उन 10 अहकाम में से एक हुक्म की नाफरमानी की तरफ लेके जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपनी मानद यानी के जो कुछ तेरा है ये समझ के उसका है, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसे दे दे। सो इस बात में वो नाकाम था और यीशु मसीह ने उसकी मजहब परस्ती को लेकर उसे सिखाया कि तू चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे कितनी भी नकली रासबाजी की चादर अपने ऊपर ओढ़ ले, तू खुदा के हजूर मकबूल नहीं हो सकता, क्योंकि तू खुदा को अपनी गिरी हुई हालत में, गुनाह आलूदा फितरत में खुश नहीं कर सकता। सो हमने इस रासबाजी के बारे में सीखा। कल हमने मत्ती की अंजील में से देखा था बनावटी तर्ज हयात के बारे में, यानी कि नकली जिंदगी के बारे में, जो जिंदगी फकी और फरीसी गुजार रहे थे खुदा से अलहदगी में, जिसमें वो अपने आप पर तवक्कल करते थे, अपने आप पर भरोसा करते थे और अपने आप को आला दर्जा देते थे। अगर आपने नहीं पढ़ा मत्ती 23वां बाप तो जरूर उसे पढ़े, मत्ती की इंजील उसका 23वां बाप। हम इस पर फिर आज गौर करेंगे, क्योंकि इसका तलक कल रात के पैगाम से भी है कि हमें ना के सिर्फ खुदा के बारे में जानना है बल्कि उसे जानना है शख्सी तौर पर। वैसे ही हमें ना के अबलीस के बारे में मालूमात रखनी है बल्कि उसकी चालाकियों को, जब वो हम पर अपने फरेब की कुंडी लगाकर बैठता है और वो गडोया, जैसे एक मछेरा गडोया हो सकता है, वो लालच का गडोया लगाता है, हो सकता है वो फरेब का गडोया लगाता है, हो सकता है वो हसद का गडोया लगाता है, हो सकता है बिद्दत का गडोया लगाकर वो बैठे हुए हैं कि कब ईमानदार उसकी कुंडी में फंसे और उनको वो अलहदा कर ले, उनमें से वो जिंदगी जो खुदा की जिंदगी है उसको वो छीनना चाहता है। ये अबलीस का काम है। एक शिकारी के तौर पर उसे देख सकते हैं, शेरे बब्बर के तौर पर देख सकते हैं। यकूब खुदा का बंदा पतरस इसी बात को बार बार वाजिया तौर पर कहता है कि वो शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है। क्यों उसे शेरे बब्बर की तरह कहा गया है तो दहाड़ता फिरता है? शेर अपने शिकार को जब वो बड़े झुंड में होता है तो वो उसे क्या करता है, उस पर हमला करता है। आपको एक छोटी सी कहानी से बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम 23वें बाप में जाएं। अफ्रीका में एक कबीला है, वो कबीला क्या करता है कि जब उनके कबीले में कोई मर्द पैदा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, कम से कम जो वो 5 साल का हो जाता है। 5 साल का जब होता है तो उस कबीले में उनका जो रिवाज है, उस बच्चे ने 5 साल से लेकर जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता, तीर कमानी, तलवार चलाना, नेजा चलाना, शिकार करना और अपने आप को महफूज करना, इसके बारे में वो सीखता है। सो जब वो 20 बरस का हो जाता है, उस कबीले में जब वो 20 बरस का नौजवान हो जाता है, तो उसको वो दलेरी, उसकी दलेरी को जानने के लिए, उसकी मर्दानगी को जानने के लिए, गांव के तमाम बुजुर्ग उस नौजवान को क्या भेजते हैं, जंगल में भेजते हैं। जब वो जंगल में जाता है तमाम दूसरे लोगों के साथ, तो वहां पर शेरों से उसका क्या होता है, सामना होता है। और शेर के बारे में पादरी साहब बता रहे थे, जबकि उस कबीले का जो रिवाज है कि किस तरह एक शख्स को जाना जाए कि वाकया ही ये मजबूत है, ये तैयार है जिंदगी का सामना करने के लिए। जब शेर उस बड़ी भीड़ को देखता है तो शेर ताकता है कि कौन है जिसे वो, जिस पर वो हमला करेगा। तो शेर का काम क्या है, वो अपनी पूंछ के साथ और अपने पंजों के साथ धूल अड़ाना शुरू करता है। धूल उड़ाना शुरू करता है, जब उस मिट्टी को उड़ाता है तो उसमें से वो अचानक भागता है और जिस बंदे को वो देख लेता है कि इसके साथ मेरा मुकाबला है। उस गांव के बुजुर्गों का कहना है कि शेर अपने जहन में इस बात को धार लेता है कि आज मैं किस पर हमला करूंगा, क्योंकि वो अपने आप को उस बंदे में देखता है। शेर सिर्फ उसी पर हमला करता है उस कबीले के मुताबिक जिस बंदे में वो अपने आप को देखता है, और शेर इस बात को धार लेता है कि मैं इसे गिराऊंगा, इसे कत्ल करूंगा, क्योंकि ये मुझसे मेरी मानद ताकतवर है। जब खुदा का बंदा नए अहदनामा में जब हम देखते हैं, मेरे साथ देखें यकूब का खत, गालबन वहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। नहीं जी, पहला पत्रस उसका 5 बाप। जब 5 बाप देखते हैं तो यहां पर ईमानदारों को खुदा का बंदा पत्रस रसूल, यसु मसीह का जानशीन, यसु मसीह का शगिर्द, जो बोलने में दलेरी में बहुत ज्यादा क्या करता था, आगे आगे बढ़कर बोलता था, बहुत खुदा का क्या कहते हैं कि बड़बोला शगिर्द। सो वो लिखते हुए कहता है, पहला पत्रस 5 बाप उसकी 8वीं आयत में ईमानदारों से कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो। होशियार से मुराद यानी के चलाक चुस्त रहो, बेदार से मुराद यानी के आगाह रहो कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम्हारा मुखालफ अबलीस। हमें इस हकीकत को कबूल करने की जरूरत है कि अबलीस है और वो हमारा मुखालफ है, दोस्त नहीं है। गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। उस कबीले के मुताबिक जब वो नौजवान तैयार हो जाता है तो शेर मिट्टी उड़ाना शुरू करता है और उस मिट्टी में से वो अचानक हमला करता है, और वो ग्रोह अगर 20 नौजवानों का हो, 10 नौजवानों को हो, तो वो सिर्फ एक पर हमला करता है, क्योंकि वो अपने आप को उसमें देखता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो शेर इस तरह का हमला करके उस नौजवान को अलहदा करता है और उसके साथ मुकाबला करता है और अपने दिन में ठान लेता है, आज ये नौजवान नहीं या मैं नहीं। अबलीस भी इसी तरह दहाड़ता फिरता है। आपको याद होगा अय्यूब पहला बाप उसकी पांचवीं आयत, अय्यूब दूसरा बाप उसकी पहली आयत। खुदावंद खुदा ने जब कहा कि अबलीस से कि तू कहाँ से आता है, तो उसने कहा कि मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता आया हूं। सो शेर यहां पर अबलीस को फाड़ने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, तबाह करने वाला जाहर किया गया है। वो आज इसी तरह फिर रहा है हमारे इर्द गिर्द, और वो आप हर एक पर, मुझ पर, आप पर, हर एक पर उसकी निगाह है। जब अबलीस को ये खतरा महसूस होता है कि ये बंदा, ये बेटी बहुत ही संजीदा है खुदा के कलाम का मुतालिया करने के लिए, खुदा की खिदमत करने के लिए, इसके लिए खुदा का बहुत आला मंसूबा है, खुदा इसे इस्तेमाल कर सकता है, इस बेटी को, इस बेटे को, तो वो हम पर हमला करता है। सो अबलीस के बारे में जानने की जरूरत है और उसे जानने की जरूरत है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में वो हमला कर सकता है झूठ के बायस, फरेब के बायस, हमें दगा देने के लिए वो दुनिया की बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। सो शेर जैसे उस नौजवान को अलहदा करता है, वैसे ही इबलीस का काम है ईमानदारों को अलहदा करके उसे एक अपने सोच में रख लेना, ताकि मैं इसको गिराऊं। इसलिए आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो मसीह यसु में हैं, जो यसु पर ईमान रखते हैं, यसु आपके अंदर रहता है, तो जब अबलीस यसु को आपके अंदर देखता है तो वो चाहता है कि आप पर हमला करे। आपका कोई वो नुकसान नहीं कर सकता जब तक यसु मसीह इजाजत ना दे। जैसे अय्यूब को, उसने हमला करने से पहले खुदा से इजाजत ली। तो खुदा जानता है कि हम किस काबल हैं, कितनी हमारी कुव्वत और ताकत है, कैसी आजमाइश और कैसी मुसीबत में से गुजर सकते हैं। सो आज इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ, आज हम 23वें बाब को शुरू ही नहीं कर पाए। अगर आज आप किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी ऐसे ज़िंदगी के बुरहान से गुजर रहे हैं जो आप कहते हैं कि बीमारी की सूरत में है, परेशानी की सूरत में है, माली तौर पर है, रूहानी तौर पर है, याद रखें कि आप खुदा के हजूर अलहदा किए गए हैं अय्यूब की तरह, के अपनी जिंदगी के तमाम दुखों में उसके नाम को जलाल दें। आपकी जिंदगी, आपके दुख बेशक देखने में, सुनने में, बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन आसमान पर हजारों फरिश्ते खुदा के तख्त की बालकनी से झुककर देखते हैं और कहते हैं, वाह कितनी अजीम बेटी, कितना अजीम बेटा। और फरिश्तगान ना के खुदा के बल्कि अबलीस के भी हैरान होते हैं जब ईमानदार को देखते हैं। इसका जिक्र मिलता है गालबन, आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह फरिश्तगान ईमानदारों के मुश्ताक हैं, उन पर नजरें जमाए हुए हैं। इसी पहले पत्रस के पहले बाब की जब हम 12वीं आयत को पढ़ते हैं, तो 12वीं आयत में, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, हमारे पास वक्त कम है, आप इसे घर जाके पढ़ सकते हैं। 12वीं आयत का कहने का मतलब यही है कि तमाम फरिश्तगान हम सब पर नजरें जमाए हुए हैं। जब कोई निजात पाता है तो क्या होता है, आसमान पर खुदा के फरिश्ते क्या करते हैं, रोते हैं, खुशी करते हैं, क्या करते हैं जी, खुशी करते हैं। तो इसका मतलब कि फरिश्तगान हमें देखते हैं। जब दानियल की दुआओं का जवाब नहीं मिला 21 दिन तक, तो माइकल फरिश्ता आकर क्या करता है, अबलीस के फरिश्तों से लड़ता है। सो फरिश्तगान हमको देखते हैं, इसलिए अपने मुखालफ के बारे में जानें। अगर आज किसी दुख, किसी मुसीबत, परेशानी में से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि आप खुदा के लिए अलहदा किए गए हैं कि जमीन पर रहते हुए उसके लिए ऐसे बालग सूरमा बने, सूरमा से मुराद सिपाही, ऐसा वॉरियर जो अबलीस के हथियारों को तोड़ देने के काबिल है। हमारी काबिलियत खुदा की तरफ से है क्योंकि यीशु मसीह हम में है। तो आए हम सब मिलकर दुआ करें। अगर आप किसी मुश्किल परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुदा पर बुड़बुड़ाने के बजाय कहें कि खुदा बाप, इस मुसीबत इस परेशानी में मुझे कुव्वत और ताकत दे ताकि तेरा मंसूबा पूरा हो। जैसे दानियल जब गार में डाला गया तो उसने भी गालबन ये कहा होगा कि खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो।